दोस्तों आज हमारे साथ हैं आलोक दीक्षित, जो भारत में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं, और वो काम इतने दर्द और दुख से जुड़ा हुआ है कि उसको सुनकर भी इंसान उदास हो सकता है। लेकिन आलोक दीक्षित ने उदास होने के बजाय लड़ने का फैसला किया, लड़ने के लिए उन लोगों को अपने साथ जुटाया जिनकी ये लड़ाई थी। आलोक ने कहा कि नहीं, जिनकी लड़ाई है वे खुद लड़ें और मैं सिर्फ साथ दूंगा। आलोक स्वागत है आपका। ये बताइए आलोक कि ये विक्टिम्स जिनके लिए आप काम करते हैं, ये विक्टिम्स ये कौन लोग हैं और आप इनके लिए क्या कर रहे हैं?
ये बहुत सामान्य लोग हैं, हम जैसे ही लोग हैं। तो ये वो महिलाएं हैं जिन पे एसिड वायलेंस किया गया है, मतलब जिनका चेहरा बिगाड़ा गया है। तो ये वो लोग हैं, ये बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन बस इन्होंने बहुत सारी बातों का विरोध करना चाहा तो वहाँ इन पर एसिड अटैक हुआ।
भारत में ऐसे कितने लोग होंगे आलोक जिन जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं?
देखिए, इसका अंदाजा अभी तक नहीं है भारत सरकार के पास भी, हमारे पास कोई इस तरह का डेटा नहीं है। केवल पिछले 2 सालों का डेटा हमारे पास आया, जो कि जिसके हिसाब से लगभग 350 केस हर साल हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पास बहुत पिछले 2 सालों का ही डेटा है, लेकिन भारत में मतलब पिछले 50 सालों से एसिड अटैक्स हो रहा है, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ बहुत पहले से, बहुत पुराने एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको 20-25 साल पहले एसिड अटैक हुआ था। पिछले 20 सालों में 30 सालों में कितने लोग इसके सर्वाइवर बने, इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है।
ये जो एसिड अटैक्स होते हैं ये क्यों होते हैं?
ये एसिड अटैक्स क्यों होते हैं, ये इस बात का जवाब भी बहुत ठीक से मैं अगर कहूँ तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हमने ऐसे जैसे जब हम इस इश्यू के बारे में हमने समझा, दूर से समझा, जाना, ऐसे केसेस को ऑब्जर्व किया, तो जो रिपोर्टेड केसेस थे उनके जरिए पता चला कि जिल्टेड लवर्स इस तरह के केसेस कर रहे हैं। बहुत सारे मेल भी हैं जिन पर एसिड अटैक होता है, 30% मेल हैं जिन पर एसिड अटैक होता है। बहुत सारे केसेस में ये आपसी झगड़े हैं, उनमें एसिड अटैक हुआ है। तो बहुत वाइड है, इसलिए अब ये कहना कि किसी एक वजह से मैं कहूँ, इससे बेहतर मैं कहूँगा कि एसिड एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और वायलेंस के सभी और कारण इसके जिम्मेदार है। मतलब जिससे वायलेंस होता है उन्हीं में से एक कारण है, मतलब वेपन की तरह बन गया है एसिड।
अच्छा, यहाँ मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि आलोक और उनकी मुहिम स्टॉप एसिड अटैक ने इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कैफेज शुरू किए हैं। आगरा और जयपुर में ये कैफे हैं जिन्हें एसिड अटैक सर्वाइवर्स ही चलाते हैं। इनका नाम है शीरोज, हीरोज नहीं शीरोज। आलोक, शीरोज क्या है?
देखिए, मैं अगर ऐसे कहूँ तो हमारा जो मोटो था वो एसिड अटैक इश्यू पे काम करके एसिड वायलेंस को कम करने का था, लेकिन उसके बीच में कहीं एक ऐसी स्थिति आई जहाँ पे हमें लगा कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट करना अभी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब तक एसिड सर्वाइवर्स का कोई ग्रुप नहीं था, तो एक ग्रुप है हमारा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि ये समस्या हमारी सिर्फ अकेले की नहीं है, जब तक हमें हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं तो हमें हिम्मत नहीं मिलती है। तो बहुत सारी सर्वाइवर्स साथ आती हैं तो उनको हिम्मत मिलती है। शीरोज जो कैफेज हैं जिनमें जहाँ पे वो लोग काम करते हैं और जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग और तमाम तरह का और एम्पावरमेंट महसूस करते हैं, मतलब वो सारी वो जगह भी अपने आप में बहुत मदद करती है उन्हें एम्पावर करने में। ऐसे ही समाज के बीच में भी ये जो इंटीग्रेट करने की सोसाइटी, उन सोसाइटी के पास मतलब डायरेक्टली कैसे सोसाइटी के साथ उनको दोबारा से जोड़ें, क्योंकि अपने घरों में वो कट जाते हैं। तो हम लोगों ने जो ये शीरो सिस्टम बनाया है, यहाँ से ये होता है कि वो उन्हें पैरेलल सोसाइटी मिल जाती है जहाँ से वो जब फिर से ओपन हो करके अच्छे से मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं।
शीरोज का ख्याल आपको कैसे आया?
शीरोज का ख्याल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शीरोज का ख्याल ये कभी एक दिन में नहीं आया, ये धीमे धीमे आता गया। क्योंकि जब 2013 में हम लोग कैंपेन रन कर रहे थे तो हमें सारे कानून लगभग 2013 में ही मिल गए थे जो बहुत जरूरी थे, जैसे एसिड फिल का रेगुलेशन, कंपनसेशन और ट्रीटमेंट, इस तरह के ऑर्डर्स, यानी फ्री ट्रीटमेंट हो, इस तरह के ऑर्डर्स आ गए थे। लेकिन इसका कोई फर्क विजिबली दिखता ही नहीं था, मतलब 2014 हम लोग जब पहुंचे तो 2014 में स्थितियां वही थी। तो ये लगा कि अगर सोशल जो फर्क है, मतलब समाज में जैसे वो कुछ बाहर निकल रहे हैं रोड पे और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, या अगर अभी भी वो घर वाले उस सर्वाइवर को अपने साथ शादी में नहीं ले जा रहे हैं, उसको घर पे छोड़ के जा रहे हैं, या मतलब नौकरियों के लिए वो कहीं जा रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, तो उन्हें इस बात के लिए मतलब मना कर दिया जाता है कि आपका चेहरा इस तरह का है कि लोग डर जाएंगे। तो ये वजह अगर नहीं बदलेंगी तो कानून कितने भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। तो नौकरी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जो सर्वाइवर्स हमारे साथ काम कर रहे थे वो सब बहुत यंग थे, तो उनको अपना एक करियर बनाना था, इसलिए बहुत जरूरी था कि उनको नौकरियां मिल गई, और उस समय नौकरियां कोई नहीं दे रहा था। तो फिर उसी समय ख्याल आया कि अगर हम लोग कोई ऐसा सेटअप डालें जिसमें हम लोग खुद नौकरियां जनरेट करें और उस सेटअप को सर्वाइवर्स रन करके दिखाएं और ये टैबू खत्म हो समाज से कि मतलब अगर हम आपको अपने स्पेस पे रखेंगे तो इससे हमारे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब मेरे चेहरे से आपके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, ये समझ बदलने के लिए की कोशिश के साथ उन्होंने शुरू किया था।
और कैसा रिस्पांस होता है लोगों का कैफे में?
हाँ, कैसा रिस्पांस होता है वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हमने कहीं ऑफिस खोला होता, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा केसेस हुए तो हमने यूपी में एसिड अटैक, मतलब सबसे ज्यादा एसिड अटैक, 3/4 एसिड अटैक पूरे देश में जो एसिड अटैक्स होते हैं उनमें 3/4 एसिड अटैक यूपी में हुए थे। तो यूपी में हम लोग अगर काम करना चाहते हैं और वहां पे अपना एक ऑफिस डालते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि लोग उस ऑफिस को विजिट करेंगे, लोग ऑफिस विजिट नहीं करते हैं, सेंटर्स विजिट नहीं करते हैं, लेकिन लोग ऐसे पब्लिक स्पेसेस में, जैसे बहुत सारे लोग शीरोज पे आते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि शीरोज है क्या, वो तो कॉफी पीने आए होते हैं, वो तो खाना खाने आए होते हैं, और जब वहां आते हैं और उसके बाद वो जानते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को और बहुत बहुत लाइटली जानते हैं उसको, मतलब बहुत उनको कोई लेक्चर नहीं दिया जा रहा होता है, बहुत लाइटली किसी से मिल करके जब वो जानते हैं कि अच्छा ये इस इश्यू पे काम कर रहा है फिर वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका भी है मेरे ख्याल से लोगों को जोड़ने का। इसका एक फर्क भी मुझे जो बहुत महसूस होता है वो ये कि एक लोकल फैमिली जो बन जाना सर्वाइवर्स, हर एक सर्वाइवर जब मैं जब किसी सेंटर जाता हूँ उनसे मिलता हूँ तो मुझे अपने लोकल दोस्तों से मिलाते हैं या बहुत लोगों को अभी प्यार, अभी अभी रिसेंटली एक लड़की कैफे पे काम करती थी और उसके कैफे पे ही काम करते थे एक और व्यक्ति, उनसे प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर ली, तो ये सारे रिहैबिलिटेशन भी शायद यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो आप अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और समाज से क्या उम्मीद करते हैं कि लोग क्या करें?
देखिए, सरकार से तो कुछ उम्मीदें ये हैं कि जो बहुत जरूरी कानून है जिनसे तमाम जगह बातचीत हो करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और तमाम आयोगों के, मतलब जो कुछ बहुत छोटी चीजें बाकी रह गई हैं कानूनन उसपे, वो पूरी हो जाए। ज्यादा बड़ी समस्या एक्चुअली एसिड वायलेंस समाज से ही है, एक चैलेंज है जो कि समाज ने बना दिया है इस वायलेंस को, कोई भी इस तरह के वायलेंस से निकल सकता है। ये अटैक शायद उतने खतरनाक नहीं है, मतलब इनसे उबरा जा सकता है, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, आप उबर सकते हैं, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे पूरी जिंदगी नहीं उबरा जा पाता क्योंकि समाज उबरने नहीं देता है। ये बिल्कुल रेप की तरह है कि रेप के बाद आप एक सर्टेन टाइम बाद आप बाहर निकल सकते हैं उसके ट्रॉमा से, लेकिन अगर आपको उस ट्रॉमा याद ना दिलाया जाए या आपको उस तरह सोशली टैबू ना बना दिया जाए तो समाज का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब समाज पहले तो इन कारणों को भी एक्सेप्ट करना शुरू करे, पहले तो उन सर्वाइवर्स को एक्सेप्ट करे जो उनके बीच हैं, साथ में उन कारणों को भी मानना शुरू करे जो वजहें बनती हैं एसिड अटैक की। तो मतलब समाज के तौर पे बहुत कुछ बदलना है, अगर समाज बदलता है तो वो कारण बदलते हैं, मतलब उस अटैक के कारण बदलते हैं, उस वायलेंस के कारण बदलते हैं।
बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए।
धन्यवाद।